الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو یہ کلاس ہماری اخلاق و عادات نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس ہے، جس میں ہم تسہیل بہشتی زیور میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پڑھتے ہیں. اس میں پچھلی کلاس میں ہم پیج نمبر 131 کے اوپر تھے، اور 66 پوائنٹ ہم نے پڑھنا ہے. تو اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ ابن سعد رحمہ اللہ تعالی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کوئی آپ سے ملتا اور وہ آپ کے ساتھ ٹھہر جاتا تو آپ بھی ٹھہر جاتے، اور جب تک وہ شخص چلا نہ جاتا تو آپ ٹھہرے رہتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی آپ سے ملاقات کرتا اور آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں سے اس وقت تک نہ نکالتے تھے کہ جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دیتا. اور ابن المبارک رحمت اللہ علیہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنا چہرہ اس کے سامنے سے نہ پھیرتے تھے جب تک کہ وہ اپنا چہرہ آپ کے سامنے سے نہ پھیر لیتا تھا، اور آپ جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی سے ملاقات فرماتے تھے اور وہ صحابی آپ کے کان کے قریب ہونا چاہتے سرگوشی کے لیے، تو آپ ان کے قریب اپنا کان کر دیتے اور اپنے کان کو نہ ہٹاتے جب تک کہ وہ شخص بات پوری کر کے خود نہ ہٹ جاتا. ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کی کیسی عجیب خوبیاں بیان فرمائی ہیں یہاں پر. بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ان میں تین باتیں ایک ہی جہت سے متعلق تین مختلف کیفیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہیں، کہ یعنی جہت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی توجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس جو تھا نا، جس کے بارے میں ہم پچھلی کلاس کے اندر بھی بات کر چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹریکٹڈ زندگی نہیں گزارتے تھے، منتشر زندگی نہیں گزارتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو فوکس ہے اور جو جو توجہ ہے وہ یعنی کا یہ انسان سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، کہ جب کسی انسان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واسطہ پڑتا تھا تو کیسے متوجہ ہوتے تھے اس کی طرف. تو ان میں سب سے پہلی والی جو کیفیت ہے وہ کہ جب کوئی آپ سے ملتا تھا اور یعنی چلنے کے دوران، ٹھیک ہے، کوئی آپ کے ساتھ ٹھہر جاتا تھا اور آپ سے کوئی بات کر رہا ہوتا تھا تو آپ بھی ٹھہرے رہتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی والی کیفیت ہو گئی. دوسری والی کیفیت ہو گئی کہ جب آپ کے ہاتھ میں کسی نے ہاتھ دیا تو اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ نکالتے تھے کہ جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دیتا تھا، یعنی اس سے جو ہے وہ کھینچ کر کے اپنا ہاتھ باہر نہیں نکال دیتے تھے اس کے ہاتھ سے. تو ایون یہ فزیکل انگیجمنٹ جو ہے نا وہ اس حد تک کہ باقاعدہ ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. اور تیسری کیا کہ جب کوئی کان میں سرگوشی کرنے کے لیے اپنا کان اپنا منہ آپ کے کان کے قریب لاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا کان اس کے منہ سے دور نہیں کرتے تھے. تو اب جو ایگزیکٹ یعنی جو 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 صورت ہے اس کی، توجہ کی صورت، ٹھیک ہے، کھڑے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو کر کے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کسی سے، اور دوسرا کیا کہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے کسی سے جو ہے وہ ملاقات کر رہے ہیں، اور تیسرا یہ کہ کان میں سرگوشی کوئی کر رہا ہے تو کان جو ہے وہ اس کی طرف لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ صورتیں تو کسی کے لیے مختلف ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، وقت اور زمانے और हालात के हिसाब से जो है वो ये सूरतें किसी के लिए तब्दील हो सकती हैं कि भाई अब जो है ना वो हाथ में हाथ देकर के बात करने का रिवाज खत्म हो गया। ठीक है, अब जो है वो ऐसे लोग एक दूसरे से बात नहीं करते कि किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, और ऐसे बहुत करते हैं लेकिन अब ये आम शहरी जिंदगी के अंदर इस तरह से नहीं होता। ठीक है, कान में सरगोशी, तो ये सरगोशी भी जो है वो यानी आमतौर पर देखी नहीं जा रही होती कि लोग एक दूसरे के कान में सरगोशी कर रहे हो, लेकिन मकसूद इसका क्या है, यानी जो जो प्रिंसिपल है, जो उसूल है, वो है कि जब किसी के साथ आप इंगेज हो तो फुल फोकस के साथ इंगेज हो। ठीक है, तो उसकी बात को जो है वो तवज्जो से सुने, और उस वक्त जो है ना वो डिस्ट्रैक्टेड ना हो, मुंतशिर ना हो। और आज जैसे कि आपने सुना भी होगा और खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, और सबसे पहले तो ऑब्जर्व अपने अंदर ही किया होगा। ठीक है, यानी ऑब्जर्वेशन जो है वो इंसान की अपने आप से शुरू होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो है वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को वो ऑब्जर्व करे। सबसे पहले तो अपने आप को ऑब्जर्व करे ना कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, ताकि वो अपनी इसलाह कर सके और अपनी यानी अगर कोई गलत बात है तो उसको दूर कर सके। इस मकसद से सबसे पहले अपने आप को ऑब्जर्व करना। तो ये दौर जो है वो हम कहते हैं कि ये सेल फोन का दौर है। ठीक है, तो सेल फोन का मामला ये कि उसके ऊपर जो है ना वो पूरी की पूरी एक दुनिया है जो कि आपसे कनेक्टेड है और आप उससे कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन जहां पर आप फिजिकली मौजूद हैं, अपने घर में हैं, अपने दफ्तर में हैं, या अपनी किसी मुलाकात में हैं, तो उस वहां पर आप फोकस नहीं है, वहां पर आप जो है वो बातचीत नहीं कर रहे, बल्कि सेलफोन के ऊपर जो है वो या तो बातचीत कर रहे हैं, या जो है वो उसके ऊपर कुछ देख रहे हैं, या उसके ऊपर कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है वो इस सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ जाती है कि हम जो है वो फोकस नहीं है उन लोगों के साथ के जिनके साथ हमारा फिजिकल इंटरेक्शन है। ठीक है, तो इसमें जहां मजबूरी की सूरत है कि भाई आप कोई वाकई अहम काम कर रहे हैं और फिर एकदम से कोई आ जाता है और वो काम इतना अहम है कि आप उसको नहीं छोड़ सकते, तो फिर या तो उनसे एक्सक्यूज कर लें, या फिर वो बंदा भी जो है वो थोड़ा रुक जाए, उसको भी सिखा दें कि भाई अभी मैं ये बहुत अहम काम के अंदर मसरूफ हूँ तो आप ठहर जाएं। ठीक है, जैसे खुसूसन बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों को जो है वो तरबियत देना कि भाई जब अम्मी काम कर रही है, इस किस्म का कोई अहम काम है तो आप ठहर जाएं, अभी आप जो है वो अपनी बात शुरू ना करें, जब ये काम मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम उसको रख देंगे और फिर हम आपके ऊपर फुली फोकस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें यानी ये एक कॉन्शियस एफर्ट जो है वो हमारे जहन में होनी चाहिए कि भाई जिससे हम बात कर रहे हैं ना, तो हम उस वक्त बात करें कि जब हम उससे फुली यानी उस सूरत में बात करें कि जब हम उससे फुली फुली फोकस्ड हों। ठीक है, और अगर कोई डिस्ट्रैक्शन वाली चीज है हमें मुंतशिर कर रही है, तो उस इंतशार वाली चीज को जो है ना वो अपनी जिंदगी से निकालें। ठीक है, इंतशार को कम करना, इंतशार डिस्ट्रैक्शन कि किसी एक जगह आप जो है ना वो मुतवज्जो नहीं हो पा रहे, बल्कि आप मुख्तलिफ जगहों में बटे हुए हैं पूरी तरीके से। औरतों के लिए उमूमी तौर पर ये काम मुश्किल होता है क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है वो बच्चों की निगहबानी की जिम्मेदारी दी हुई है। ठीक है, अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर मर्दों के वास्ते से बच्चे नहीं लेकर के आते। ठीक है ना, मर्द प्रेग्नेंट नहीं होते, अगरचे कि आजकल जो है वो यानी इतना मामला इस हद तक गुजरा हुआ है कि अभी एक खबर आई है कि बर्तानिया के अंदर एक मर्द बाकायदा प्रेग्नेंट हो गया है, बाकायदा हो गया था, बल्कि उसकी औलाद भी हो चुकी है। ये अब जिस तरीके से मेडिकल साइंस ने तरक्की की है तो ये इस दर्जे तक दुनिया को लेकर के जा रहे हैं और शुरू हो चुका है इस किस्म का काम। ठीक है, लेकिन इसमें अगर खुदा ना खास्ता इनका ये सिलसिला आगे बढ़ता भी रहा, ठीक है ना, तो भी इसमें बहुत लंबा अरसा लगेगा कि ये इस किस्म की कोई तब्दीली लेकर के आ सके। लेकिन दुनिया के अंदर ऐसा निजाम है नहीं, ना अल्हम्दुलिल्लाह आज है और ना कभी पहले था। तो औरत ही के जरिए से इस दुनिया में जो है वो औलाद आती है, और औरत ही के वो पास रहती है, औरत ही को अल्लाह ताला ने माँ का दर्जा दिया है। तो अपनी इस जिम्मेदारी से जो है ना वो तंग आ जाना और इसके ऊपर जो है वो कंप्लेन करते रहना और उसके ऊपर शिकायत ही हर वक्त कि नहीं बच्चे तो मुझे कुछ करने नहीं देते, बच्चे जो है ना वो तो मैं तो फोकस नहीं कर सकती किसी चीज के ऊपर, मैं जो है वो हर वक्त डिस्ट्रैक्टेड रहती हूँ, मुंतशिर रहती हूँ। भाई क्यों मुंतशिर रहती हैं? वो अल्लाह ने औलाद की नेमत दे दी थी, इस वजह से मुंतशिर रहती हूँ। है तो नेमत आपको बुरी लग रही है अल्लाह ताला की, ना देते तो क्या करती? ठीक है ना, ना देते तो क्या करते, उनको देखें कि जिनके पास औलाद की नेमत नहीं है, है ना, वो चाहती हैं औलाद लेकिन औलाद नहीं हो करके देती उनके पास, ठीक है। तो अल्लाह ने दी है तो ये तो अल्लाह की नेमत है ना, तो इसको इसके ऊपर कंप्लेन ना करें, इसके ऊपर कंप्लेन करेंगे अल्लाह ताला नाराज हो गए तो फिर बहुत बड़ा मसला ना कहीं पैदा हो जाए, बहुत बड़ा मसला पैदा ना कहीं हो जाए। बहुत आसान है ना, अभी गजा के अंदर जो बॉम्बिंग हो रही है, जिस आज जिसने एक खबर पढ़ी कि एक घर के ऊपर बम आकर के गिरा, 19 अफराद चले गए दुनिया से, 19 अफराद उस फैमिली के एक साथ, ठीक है ना। कितना टाइम लगता है इसके अंदर, एक लम्हा लगता है खाली। लीबिया के अंदर जो जो सैलाब आया, तो उस सैलाब के अंदर लोग कोई पहले से प्लान करके नहीं बैठे हुए थे कि अब जो है वो पानी आएगा और फिर जो है ना वो हम सबको खत्म करके चला जाएगा, ठीक है। हम अपनी डेथ के बारे में प्लान नहीं कर रहे होते ना, इस किस्म के डिजास्टर्स के बारे में, जिंदगी को पलटने में लम्हे से ज्यादा नहीं लगता, एक लम्हे से ज्यादा नहीं चाहिए जिंदगी की काया पलट जाने में, ठीक है। तो अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करनी है हमने अभी और इसी वक्त, क्लास खत्म होने का भी इंतजार नहीं करना है, ठीक है ना। इसी वक्त हमने अल्लाह की नेमतों की कदर करनी है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मु सालिहात, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर बात उन नेमतों की नहीं हो रही है कि औलाद की नेमत की वजह से आप डिस्ट्रैक्टेड हैं तो अब औलाद को जो है वो साइड पे कर दें, औलाद से जो है वो पीछा छुड़ा दें, या औलाद को जो है वो टीवी के सामने बिठा दें, या औलाद को टैब पकड़ा दें ताकि वो मेरी जान छोड़ दे, नहीं, उसकी बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ठीक है ना। वो करेंगी तो अल्लाह का अजाब आएगा, ठीक है। और अल्लाह अजाब जो है वो किसी एक शक्ल में नहीं आता, हमें हमें अंदाजा नहीं होता कि कैसे अल्लाह का अजाब आ जाएगा, ठीक है। यहां पर बात हो रही है कि औलाद का मसला नहीं है बल्कि कोई और आपने पाली हुई है, ये फोन पाला हुआ है और जो है वो उसके ऊपर जो है वो बेशुमार आप जो है वो ग्रुप्स का हिस्सा बनी हुई है, ठीक है ना। हम मैसेज भेजते हैं, अच्छा कल हमने जो है वो मैसेज भेजा मर्दों के एक ग्रुप के ऊपर, ठीक है, ये जो हमारे हजरत का नक्शबंदी इज्तिमा हो रहा है, तो उसका एक फ्लायर भेजा और जो है ना वो उसके ऊपर एक मैसेज लिख दिया, थोड़ी यानी थोड़ी तो नहीं बल्कि काफी देर के बाद, कल ही के दिन में किसी साहब से जो है वो बात हुई, तो हमने कहा कि भाई आप भी आ जाएं इज्तिमा में तो मुलाकात हो जाएगी। तो आगे से जवाब देते हैं कि कौन सा इज्तिमा, कैसा इज्तिमा, कब हो रहा है ये इज्तिमा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे आप उस ग्रुप के ऊपर हैं ना, जिस ग्रुप के ऊपर अभी हमने बाकायदा एक तस्वीर भेजी है, पोस्टर भेजा है और साथ साथ एक मैसेज भी लिखा है, लेकिन उन्होंने वो पढ़ा ही नहीं, उन्होंने वो देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं पढ़ा, हर वक्त तो फोन देखते रहते हैं, हर वक्त तो फोन के ऊपर होते हैं, तो फिर क्यों नहीं जो है वो उस मैसेज को पढ़ा। इस वजह से कि इतने सारे ग्रुप सब्सक्राइब किए हुए हैं, इतने सारी चीजों के अंदर जो है वो शामिल हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ आता रहता है हर वक्त, ठीक है ना। तो अब जो है वो कोई आप किसी एक चीज पर भी फोकस नहीं हो सकते, किसी एक चीज पर भी फोकस नहीं हो सकते, ठीक है ना, क्योंकि आपने इतनी जगहों पर टांगे फंसाई हुई हैं, तो आप किसी एक पर भी फोकस नहीं हो सकते। और ये शैतान को अच्छी तरीके से पता है, ये बात जरा गौर से सुन लें, शैतान को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान बनाया है ना, इस इंसान की एक एक कैपेसिटी होती है, इस इंसान की जो है ना वो एक इस्तेदाद होती है, ठीक है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम किसी की वसअत से ज्यादा उसके ऊपर बोझ नहीं डालते। क्या पता चलता है इस आयत से कि इंसान की एक वसअत होती है, एक कैपेसिटी होती है, एक इस्तेदाद होती है, उससे ज्यादा वो नहीं संभाल सकता, उससे ज्यादा वो नहीं संभाल सकता, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। जितनी अल्लाह ने बनाई है उससे ज्यादा वो नहीं मैनेज कर सकता, ठीक है। तो अब जो है ना अगर किसी इंसान को ऐसा कर दो कि वो बिल्कुल मिसमैनेज्ड हो जाए, मिसमैनेज्ड, ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीका है आप बता दें। किसी इंसान को किसी काम का ना छोड़ो, आपका आपका इरादा ये है कि आप किसी का किसी इंसान को किसी काम के लायक नहीं छोड़ना चाहते, आप उसको जो है ना वो बिल्कुल मिसमैनेज करना चाहते हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं उसके साथ, ये बताएं जरा आप क्या करना चाहिए जब किसी इंसान को आप किसी काम के लायक ना छोड़ना चाहें, तो आप क्या करें। बहुत आसान सा एक तरीका है उसका, जी इन्वॉल्व कर दें बहुत सारी चीजों में, ठीक है ना, नेट पे बिठा दो माशाल्लाह, ठीक है, नेट पे बिठा दें, मतलब आप उसको उसकी कैपेसिटी से ज्यादा आप उसके ऊपर काम डाल दें, बोझ डाल दें उसके ऊपर, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप अगर उसके पास 3 बच्चे हैं तो आप उसको 5 बच्चे दे दें, 5 बच्चे पैदा कर दें उसके घर में, क्या ख्याल है, सही कह रहा हूं मैं? अगर पहले 3 बच्चे थे, अब जो है ना वो आप उसको बर्बाद कर देना चाहते हैं, तो आप उसके घर में 5 बच्चे पैदा करवा दें। नहीं, ये बच्चे पैदा करना ये हमारे बस में नहीं है, ये इंसान नहीं कर सकता, ठीक है ना। बच्चे पैदा करना, किसी औरत को जो है वो औलाद देना, ये किसका काम है? ये परवरदिगार का काम है, ये खालिक का काम है, खालिक का काम है, मालिक का काम है, राजिक का काम है, ठीक है ना। तो किसी औरत के घर में अगर 6 बच्चे हैं, किसी औरत के घर में अगर 10 बच्चे हैं ना, ये परवरदिगार ने दिए, ये किसी इंसान ने नहीं दिए, ये किसी शैतान ने नहीं दिए, ठीक है, ये किसी यहूदो नसारा ने नहीं दिए, ये किसी मुशरिक ने नहीं दिए, ये किसी दुश्मन ने नहीं दिए, ये किसने दिए हैं? ये परवरदिगार ने दिए हैं। तो जिस परवरदिगार ने जो दिया है ना, उसके यहाँ उसूल ये है, ला नुकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम वुसअत से ज्यादा बोझ नहीं डालते। तो क्या मतलब परवरदिगार ने इस औरत की वुसअत बनाई पहले 10 बच्चों को हैंडल करने की, और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है वो 10 बच्चों का बोझ डाला, ठीक है ना। तो बच्चों का बोझ जो है ना, ये वुसअत से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्यों? इसलिए कि बच्चे को इंसान नहीं दे सकता, बच्चा तो परवरदिगार देता है, लेकिन इंटरनेट, इंटरनेट को हम परवरदिगार से मंसूब नहीं कर सकते। सेलफोन और उसके ऊपर जो है वो आपने जो व्हाट्सएप के जो बेशुमार ग्रुप्स सब्सक्राइब किए हुए हैं, और जो फेसबुक के ऊपर आपने अपनी टांग अड़ाई हुई है, इसको परवरदिगार की तरफ मंसूब नहीं कर सकते। इसको किसकी तरफ मंसूब करना होगा? इसको अपनी तरफ मंसूब करना होगा, अपने नफ्स की तरफ, क्योंकि कोई आपको डंडे मार करके जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो सब्सक्राइब नहीं करवा रहा होता, फेसबुक के ऊपर नहीं डाल रहा होता, ठीक है। ये इंसान अपनी मर्जी से फेसबुक पे जाता है, अपनी मर्जी से जो है वो सोशल मीडिया पे जाता है, अपनी मर्जी से जो है वो खराफात के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अपनी मर्जी से जो आपने अपने ऊपर बोझ डाले हुए हैं ना, ये अपन अपना कसूर है, ठीक है ना, ये अपना कसूर है। और इस बोझ के अपने ऊपर डाल लेने का नतीजा क्या होता है कि आप किसी काम के नहीं रहते, आप किसी काम के नहीं रहते, ठीक है ना। अब ये तो हो गई आपकी बात, जो कि एक मेच्योर इंसान है, ठीक है ना, तो आप अपने फेल का खुद जिम्मेदार हैं, मैं अपने फेल का खुद जिम्मेदार हूं, ठीक है ना। अब हम उस क्लास की बात करते हैं कि जो कि अपने फेल के खुद जिम्मेदार नहीं है, ठीक है, उनको अगर आप किसी काम का नहीं छोड़ना चाहते हो, ठीक है ना, उनको आप बर्बाद कर देना चाहते हो, तो आप उनके ऊपर क्या करें? तो ये आपसे सवाल है कि हम किसकी बात कर रहे हैं आप, और उसको कैसे बर्बाद करना हो करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं ये आप बता दें, बच्चों की, ठीक है, बच्चों की बात कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे तो अपने फेल के जिम्मेदार खुद नहीं होते ना, तो अब बच्चों को कैसे बर्बाद करते हैं ये आप बता दें। आप में से बहुत से एक ग्रुप पर हैं कि जिसके ऊपर हमने कल एक चीज भेजी थी, बहुत सी नहीं भी हैं उस ग्रुप के ऊपर, ठीक है, तो उस ग्रुप के ऊपर हमने एक तस्वीर भेजी थी, वो तस्वीर हमें जो है ना वो कुछ महीनों पहले किसी ने कराची शहर से भेजी थी, ठीक है, कि कराची में सुबह 7 बजे जो है ना वो कोई अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गया, तो उनको जो है ना ये बच्ची नजर आई, जिस बच्ची के पीछे जो है ना वो एक बैग था, इल्म का बैग, तालीम का बैग, तालीम के जेवर का बैग बल्कि, ठीक है, तालीम के जेवर का बस्ता, और वो बस्ता इतना बड़ा है, और वो बच्ची जो है ना वो उसकी उम्र डेफिनेटली वो 8 साल से ज्यादा नहीं लग रही, 7-8 साल की वो बच्ची है, और उसके पीछे जो बैग लटक रहा है ना इतना बड़ा है कि उस बच्ची से चला भी नहीं जा रहा, वो अपने पूरे दोनों हाथों को जो है ना वो आगे करके ऐसे करके चल रही है, ठीक है ना, नॉर्मल उसके हाथ नीचे लटक करके नहीं चल रहे, जैसे कि आम इंसान के हाथ चलते हैं ना, चलते हुए लटक राइट और लेफ्ट पे लटक रहे होते हैं ना, नहीं, उसके हाथ लटक नहीं रहे, उसके हाथ आगे की तरफ निकले हुए हैं, यानी शी इज ट्राइंग टू हैंडल द लोड, वो इस तरह से चल रही है कि वो बैग के साथ जो है ना वो नॉर्मल तरीके से चल भी नहीं सकती, इतना बोझ उस बच्ची के ऊपर डाला हुआ है, और वो बैग को लेकर के जा रही है, ठीक है ना, स्कूल की इमारत के सामने। तो ये जो इतनी सारी किताबें उसके ऊपर डाली गई हैं, इसका क्या फायदा हो रहा है उस बच्ची को? इसका फायदा नहीं हो रहा उस बच्ची को, उसको ना सिर्फ फिजिकल नुकसान हो रहा है कि वो उसकी कमर में कोई तकलीफ हो जाएगी, कोई उसको कुछ पेन हो जाएगा कुछ इस किस्म की, बल्कि उसको मेंटल नुकसान हो रहा है, मेंटली उसके ऊपर इतनी सारे मजामीन, इतने सारे जो है वो किताबों, अच्छा एक एक मजमून की तीन तीन चार चार किताबें होती हैं, और एक एक बच्चे को जो है ना वो छह छह सात सात आठ आठ मजमून पढ़ाए जा रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और क्यों पढ़ाए जा रहे होते हैं? ताकि वो बच्चा सब कुछ सीख जाए, यानी नारा क्या लगा रहे होते हैं, बच्चा सब कुछ सीख जाए, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा जहालत और कोई नहीं है कि वो माँ बाप समझ रहे होते हैं कि हमारा बच्चा सब कुछ सीख जाएगा, और उसको सब कुछ सीख जाएगा, पहले तो वो सीख नहीं सकता, लेकिन अगर सीख भी गया तो उसको कोई फायदा हो जाएगा इससे,
बिल्कुल
ठीक है ना। ये जाहिलों की सिखाई हुई बातें हैं जो कि हमने उनसे जो है ना वो अडॉप्ट करनी है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं इस तरीके से। उनको पता है कि इनको किसी काम के लायक नहीं छोड़ना, का तरीका ये है कि इनके ऊपर इनकी वसत से ज्यादा बोझ डाल दो। और बड़ों के ऊपर बोझ डालना तो वो तो खुद चलो बड़े अपनी मर्जी से डलवाते हैं अपने ऊपर ना, लेकिन बच्चे तो अपनी मर्जी से नहीं डलवाते ना, बच्चों के ऊपर तो माँ बाप डाल रहे होते हैं। तो वो लोग माँ बाप के वास्ते से ये जो तालीमी निज़ाम बनाने वाले हैं ना, ठीक है ना, जो ताली असल जो आपको आपके दुश्मन है, जिनको कि आप दुश्मन आपको नजर ही नहीं आते वो दुश्मन, ठीक है ना, वो आपके वास्ते से आपके औलाद के ऊपर ये किताबों का एक्स्ट्रा बोझ डलवा करके आपकी औलाद को किसी लायक नहीं छोड़ रहे होते, किसी काबिल नहीं छोड़ रहे होते, क्योंकि वो उनकी वसत से ज्यादा है। जब वसत से ज्यादा कोई चीज किसी के ऊपर पड़ जाती है, अब वो जो पहले कर रहा था ना सही काम, अब वो भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो दिन में चार काम करता है, ठीक है ना, चार काम जो है वो मैनेज कर सकता है। अब अगर आप उसके ऊपर पांचवा काम डाल देंगे ना, पांचवा काम अगर आप डाल देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि उसके उसका पांचवा काम मुतासिर होगा, वो पांचवा काम सही तरीके से नहीं कर सकेगा, लेकिन चार काम जो वो पहले से सही तरीके से कर रहा था वो सही तरीके से करता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि पांचवा काम डालने से क्या होगा कि वो जो चार काम सही कर रहा था ना, वो चारों भी मुतासिर होंगे और ये पांचवा भी मुतासिर होगा, वो पांचों काम सही से नहीं कर सकेगा, वो पिछले चार काम भी सही से नहीं कर सकेगा। ये मतलब है किसी काम के लायक नहीं छोड़ने का। तो आप ऊपर से एक्स्ट्रा बोझ डाल करके फिर हर चीज को मुतासिर कर देते हैं, हर चीज को मुतासिर कर देते हैं, जिनको वो पहले ठीक कर रहा था वो भी ठीक नहीं कर पाता। क्या ख्याल है, किसी को एतराज उसके ऊपर? नहीं, मैं तो ऐसे नहीं करती, मेरे ऊपर तो जितना काम डाल दो ना मैं सारे काम अच्छे से करती हूं। आप में से कोई कह सकता है? अगर कोई कहेगा तो फिर हमारे पास भी इसका जवाब मौजूद है कि आपके साथ यही तो हो गया है कि आपका दिमाग ही चल चल चुका है, अब आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि आपके सारे काम खराब हो रहे हैं, और आप जो है ना इस जोम में मुबतला जो है ना कि मैं सारे काम सही कर रही हूँ, यही आपके दिमाग की खराबी है जो कि उन्होंने कर दी है इस तरीके से, ठीक है ना। और यानी ये समझना कि मैं सारे काम सही कर रही हूँ यही तो असल में वो करना चाह रहे थे कि आपको ऐसा जहनी तौर पर माउफ कर दें कि आपको समझ में ही ना आए कि आपके कौन से काम जो है वो गलत हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना करिकुलम का बोझ और किताबों का बोझ जो हम औलाद पे डाल रहे हैं ना, और बड़ा खुश हो रहे हैं कि हमारी औलाद तो पढ़ लिख करके जो है ना वो अच्छी बच्ची बन रही है, अच्छा बच्चा बन रहा है, और फिर जो है ना वो बहुत ही काम आएगा और बड़ा अच्छी सी जिंदगी गुजारेगा, ये सिर्फ एक धोखा है, और इस धोखे का शिकार हमारी पूरी की पूरी कौम है, और उस कौम को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है वो यानी इस हालत में रखा हुआ है कि कम अज कम कहने वालों के लिए जो है वो बहाना तो रहे कि वो समझा सकेंगे, हाँ भाई देखो तुम्हारा क्या हाल है, ठीक है ना। अगर हमारे हाल बज़ाहिर अच्छे हो जाते हैं ना तो फिर हम जैसों की तो फिर बात ही बंद हो जाती है कि हम तो समझा ही नहीं पाते, फिर उसके बाद आगे से आप यही जवाब देते हैं कि नहीं, हमारा तो इतना अच्छा हाल है, सब कुछ तो बेहतरीन है, हम तो चांद पे भी पहुंच गए, ठीक है ना, हम तो चांद पे भी पहुंच गए, तो आप जो है वो खामखा ही बोल रहे हैं कि हमारा हाल खराब है। ठीक है ना, अल्लाह का शुक्र है चांद पे नहीं पहुंच सके अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वरना तो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता बिल्कुल भी। अच्छा, तो फोकस नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी का क्या था तरीका? फोकस, ठीक है ना, अपने कामों के ऊपर भी फोकस और इंसानों के ऊपर भी फोकस जिनसे जो है वो इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है जी, चले, आधा घंटा तो उसी में निकल गया। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं 67 के। नसाई रहमहुल्लाह ताला ने हजरत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके सहाबा में से कोई मिलता था तो आप मुसाफिहा फरमाते थे और उनके लिए दुआ फरमाते थे। ठीक है, तो एक जुबान से भी दुआ करना और दिल से भी दुआ निकलना। जो सहाबा, सहाबा कौन थे? ये जानेसार लोग थे, ये मोहब्बत करने वाले लोग थे, ये नबी अलैहिस्सलाम को दीन के काम के अंदर असिस्ट करने वाले लोग थे। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये दिल से दुआ लेते हैं, इनके लिए दुआ निकलती है, इनको करवानी भी नहीं पड़ती, कहनी नहीं पड़ कहना नहीं पड़ता कि जी मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा थे, ये सहाबा की भी शान थी ना कि नबी अलैहिस्सलाम उनसे मिलते थे और उनको दुआ देते थे। ठीक है ना, क्योंकि थे ये इतने अच्छे और ऐसे जो है आप से मुखलिस थे, मुखलिस थे। ठीक है, और मदद करते थे दीन के कामों के अंदर। पॉइंट नंबर 68 की तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत जुंदुब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मिलते तो मुसाफहा नहीं फरमाते थे, यहां तक कि सलाम कर लेते थे, यानी पहले सलाम करते थे फिर मुसाफहा फरमाते थे। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम के साथ जो है वो फिर मुसाफहा फरमाते थे। ठीक है, तो मर्दों का ये तरीका मुसाफहा करने का होता है, औरतों में जो है वो मुसाफहा इतना राइज नहीं होता, और इसकी कोई ऐसी भी नहीं है कि नहीं मुसाफहा करना चाहिए, लेकिन कर लें। ठीक है, कर लें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, औरत औरत के साथ जो है वो। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगला पॉइंट 69 के इब्न सन्नी रहमतुल्लाह अलैह ने या सुन्नी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी शख्स को पुकारना चाहते थे और उसका नाम याद ना होता था तो यबना अब्दिल्ला या इबना अब्दिल्ला जोड़ करके उसको जो है वो यबना अब्दिल्ला, सॉरी अब्दुल्ला नहीं, इबना अब्दिल्ला है ना, हाँ अब्दिल्ला, तो यानी ए अल्लाह के बेटे, इबन के साथ है तो इस वजह से अब्दुल्ला, तो यानी नाम याद नहीं होता था। ठीक है, यानी नबी अलैहिस्सलाम कोई मशीनी रोबोट किस्म की चीज तो नहीं थे ना। ठीक है, कि मशीन को जो है ना वो जो चीज आपने फीड कर दी है तो अब जो है ना वो भूल ही नहीं सकती। नबी अलैहिस्सलाम इंसान थे, बशर थे। ठीक है, तो बशरी तकाजे जो है ना वो, जिसके अंदर के गुनाह का कोई अंसर ना हो, ये भूल जाना कोई गुनाह का काम तो नहीं है ना। ठीक है, तो नबी से, नबी गुनाह से मासूम होता है, गुनाह से पाक होता है, लेकिन उसके अलावा जो बशरी तकाजे हैं वो तो नबी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो भूल जाते थे, तो इस तरीके से अल्लाह का बंदा यानी अल्लाह का जिक्र जो है ना वो उस वक्त भी ऐसे मौके के ऊपर भी कि जिस का नाम याद नहीं आ रहा, और अल्लाह के बंदों को अल्लाह के बंदों के कि अल्लाह की नस्बत से पुकारना। ठीक है, कोई और नस्बत नहीं कि ओ मक्की, ओ मदनी। ठीक है, ये भी तो एक नस्बत है ना, शहर की नस्बत। ठीक है, लेकिन नहीं, अल्लाह की नस्बत से पुकारते थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 70 के हाकिम रहिमहुल्लाह ताला ने हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला से रवायत किया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे तो इधर उधर नहीं देखते थे। ठीक है, इधर उधर नहीं देखते थे, ये भी ठीक है, मतलब फोकस अपने रास्ते के ऊपर फोकस, इधर उधर से देखना मतलब यानी कभी ये भी एक डिफोकस होने का ही एक एक होता है, अनलेस कि आपको जरूरत है अपने इधर उधर देखने की कि भाई कहाँ जा रहा हूँ और क्या जो है वो रास्ता है, कोई नया रास्ता है तो उसके अंदर जो है वो देख करके जाना कि भाई कहीं मैं किसी नुकसान के अंदर या मैं अपने साथियों को नुकसान में ना ले जाऊं, तो उस नीयत से इधर उधर देखना जो है वो तो बुरा नहीं है, वो तो जाहिर है सही अच्छी नीयत के साथ है, लेकिन ये एक आदतन इधर उधर देखना जो है वो पसंद नहीं किया गया। यहाँ सऊदीया में लोग मोहम्मद कहते हैं या मोहम्मद, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, ये भी कह सकते हैं भाई इसको। ठीक है, कि भाई वो जिसको जिसका नाम उनको नहीं पता होता तो वो या मोहम्मद कह देते हैं। ठीक है, तो यानी इसको कोई बुरी बात तो नहीं कह सकते, इसको अच्छा ही है कि नबी अलैहिस्सलाम उनको याद रहते हैं। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम जो है चूंकि खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो अगले बंदे को जो है वो अल्लाह की निस्बत से ही पुकार रहे होते थे। ठीक है, लेकिन अब इन लोगों का एक कल्चर बना हुआ है तो वो भी फिर मतलब आपसे सुनमी की नस्बत है ना। हाँ, किसी मुसलमान ही को देख करके या मोहम्मद कहें और ना किसी काफिर को देख करके या मोहम्मद ना कहना शुरू कर देंगे उसको। अच्छा, 71, तिर्मिजी रहमतुल्लाह ताला ने हजरत हफसा रजी अल्लाह ताला अनहा से रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिछौना टाट का था, यानी जो जो बिछा करके जिसके ऊपर लेटा करते थे तो वो टाट का बना हुआ था। ठीक है, टाट इस किस्म का मटेरियल होता है जैसे यानी लेदर का, तो यानी कोई कोई कंफर्टेबल किस्म का, बहुत ही फ्लेक्सिबल इस किस्म का बिस्तर नहीं था। हालांकि उस जमाने में ऐसे नहीं है कि ये चीज मौजूद ही नहीं थी। ठीक है, मौजूद तो थी, लेकिन खजूर का मैट, टाट नहीं, टाट के लिए जरूरी तो नहीं है कि वो खजूर का हो, नहीं खजूर के पत्तों के ऊपर लेटने का तो नहीं। ठीक है, तो अब हमने तो वैसे जिंदगी में टाट के ऊपर नहीं गुजारा किया ना। तो हाकिम रहमहुल्लाह ताला ने हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता टखनों से ऊपर होता था, यानी निस्फ पिंडलियों तक, जैसे कि दूसरी रिवायत में आता है। ठीक है, यानी निस्फ पिंडलियों तक, घुटने से लेकर के जो टखने होते हैं तो उनके दरमियान। ठीक है, तो कुर्ता ऊपर का, ऊपर से जो चीज पहनी जाती है ना उसको कुर्ता कहते हैं। तो हमारे यहाँ भी जो जो कुर्ते होते हैं इंडिया पाकिस्तान के अंदर, अगरचे कि उनके अंदर चाक होती है, ठीक है, राइट और लेफ्ट में जो है ना वो कटे हुए होते हैं, चाक का कुर्ता जिसको कहते हैं, तो वो भी पिंडली तक जाता है टिपिकली। ठीक है, बहुत लंबे कुर्ते जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसे रिवाज में आए नहीं है, लेकिन जो सुन्नत से पता लगता है और मुख्तलिफ तरीकों से जो मशाइख ने जिसको साबित किया है ना, वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम का जो कुर्ता होता था ना वो उसमें चाक नहीं होता था, बल्कि रवायात से साबित तो पहले किया था कि उसमें चाक नहीं होता था। जो टर्की का म्यूजियम है गालबन टुपकापी म्यूजियम के अंदर जो नबी अलैहिस्सलाम का कुर्ता मौजूद है, तो वो भी बेचाक का कुर्ता है बगैर चाक के। ठीक है, तो ये चीज ज्यादा सुन्नत के करीब है, अगर चेके चाक वाला जो है ना वो भी कोई वो ऐसा नहीं है कि जी वो, क्योंकि पुराने जमाने में, उस जमाने में जो है ना वो नीचे लोग जो है वो धोती पहना करते थे। ठीक है, धोती यानी जिसको कुछ जगहों पे लुंगी थी, एक थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल होता है, लेकिन वो लुंगी धोती तहबंद ये सब बेसिकली चादर को लपेट लेना यही कहलाता है ना। तो उस जमाने में जो है ना ये धोती जो चीज है ना ये वैसे तो टाइट से जो है वो आप बांध लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि भाई चलते चलते जो है वो किसी की धोती उतर जाए, लेकिन अगर किसी किस्म की फाइट में आप चले जाएं या जंग के अंदर चले जाएं, ठीक है, तो अब जंग में तो फिर हर किस्म की चीज होती है ना, यानी कुश्ती भी हो रही है और जो है वो भाग रहे हैं और इधर से उधर जो है यानी वो हथियारों से हमला कर रहे हैं, हथियार से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो है ना वो धोती का खुल जाना जो है वो उसका बड़ा एहतमाल हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर से ऐसा कुर्ता पहनना कि अगर धोती खुल भी जाए ना तो सतर जो है वो ना नजर आए। ठीक है, तो इससे भी साबित होता है कि यानी जो कुर्ते होते थे उस जमाने में वो बगैर चाक के होते थे, वरना तो फिर सतर जो है वो एक्सपोज हो जाए आसानी के साथ। ठीक है, और बाकायदा एक हदीस मुबारक के अंदर भी है जो कि आपने हजरत जी के बयान में भी सुना होगा कि हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह से पूछा हजरत ने कि जी वो आपसे का कुर्ता जो है वो चाक वाला होता था कि यानी कि नहीं होता था चाक वाला, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि एक सहाबी का की हदीस है कि उनको जो है ना वो शिकार नजर आया तो वो शिकार के पीछे भागे, यानी ऐसी चीज थी जिसको भाग के पकड़ा जा सकता था, और उन्होंने कहा कि मैं तहबंद नहीं पहना हुआ था। ठीक है, जब बगैर तहबंद के कोई भागेगा तो उसका सदर तो एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी पता चलता है, यानी एक अकली दलील उस नकल, उस हदीस मुबारका की नकल से, कि जो कुर्ता था वो चाक वाला नहीं होता था, ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, फिर उसके बाद तो माशाल्लाह म्यूजियम के अंदर ही वो मौजूद है, तो उससे ज्यादा और क्या दलील चाहिए। तो एक तो ये हो गया। तो इस वजह से जो जुब्बा हमारे हजरत का आपने देखा होगा, तो वो भी जो है ना वो बगैर चाक का जुब्बा होता है, ठीक है। कुछ लोगों ने जो है वो आप सल्लम की ज्यारत भी करी है ख्वाब के अंदर, तो उसमें भी उन्होंने यही देखा कि जी ऐसे ही कुर्ता था जैसे कि हमारे तो पहनते हैं। फिर उसके बाद फरमाया कि और आपके कुर्ते की आस्तीनें उंगलियों के बराबर होती थी। और दूसरी हदीस में जिसको अबू दाऊद और तिर्मिजी रहमहुल्लाह ताला ने रिवायत किया है कि आस्तीन की लंबाई हाथों के गट्टों तक वारिद हुई है, ठीक है, यानी जिसको कलाई कहते हैं ना हमारे यहाँ। तो गर्ज दोनों तरह आपका पहनना साबित है, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते की आस्तीनें कभी गट्टों तक होती थी और कभी उंगलियों के बराबर होती थी, ठीक है। तो यानी इस तरह से भी सुन्नत और उस तरह से भी सुन्नत, ठीक है, क्योंकि यानी दोनों तरह से होती थी। ऐसा नहीं है कि बस एक दफा आप ने जो है वो उंगलियों तक पहन लिया, ठीक। तो यार कुर्तों के बारे में यानी कपड़ों के बारे में जहां तक जो है वो शरी तकाजा हो गया, सदर पोशी वगैरह, ठीक है, तो उसमें तो फिर स्पेसिफिक होना। लेकिन उंगलियों ये जो आस्तीन है इसकी लंबाई, इसका जो है वो शरी तकाजे को इससे कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। तो उस बारे में जो है ना वो बेफिक्र, कभी ऐसे मिल गया तो ऐसे पहन लिया, वैसे मिल गया तो वैसे पहन लिया, ठीक है ना। लिबास के बारे में बहुत पर्टिकुलर कि नहीं मैंने ऐसे ही लिबास पहनना है, और जबकि कोई ऐसा शरी तकाजा नहीं है, कोई ऐसी उसके अंदर जरूरत नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही, बस अपना शौक, जी मेरा शौक ऐसा है कि मैं ये वाला फैशन ही इख्तियार करना। अच्छा, इमाम अहमद, तिरमिजी और इब्न माजा रहमहुल्लाह ताला ने हजरत आयशा सिद्दीक रज़ी ताला अन्हा से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकिया चमड़े का था जिसमें खजूर के दरख्त की छाल भरी थी। खजूर के दरख्त की एक छाल नजर आती है, कभी आप गौर करें अगर किसी जो जो मेल प्लांट्स होते हैं उनमें ये खजूर की छाल जो है ना वो ज्यादा वाजह होती है, यानी नेट, एक तरह का नेट होता है वो, तो उसको जो है वो जमा कर लिया जाता था। वो कोई सख्त चीज नहीं होती है, वो नरम चीज होती है, उसमें उसमें सॉफ्टनेस होती है, ठीक है। तो उसको जो है ना वो चमड़े के बैग के अंदर अगर डाल दिया जाए तो वो नरम हो जाता है, ठीक है। और अगर उसके अंदर जो चुभने वाली चीजें हैं तो चमड़ा जो है वो उसके चुभन से इंसान को महफूज कर देगा। तो ऐसा जो है वो आपसे सुनकर तकिया होता था। तिब्रानी रहमतुल्लाह अलैह ने नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मामूली दर्जे के छुहारे भी इस कदर मुयस्सर ना आते थे जिससे आप शिकम सैर हो जाते, यानी पेट भर करके जो है ना वो छुहारे खाने भी मुयस्सर नहीं आते थे, ठीक है। तो कम खाना मुयस्सर, यानी अगर होता भी था तो पेट भर करके नहीं खाते थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के पास तो होता ही नहीं, ठीक है। तो इसकी तो बहुत सारी आपने रिवायात हदीस वगैरह सुनी होंगी। तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल के लिए कोई चीज जमा नहीं रखते थे, ठीक है, यानी सेविंग्स जो है ना, सेविंग्स अकाउंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं होता था, ना घर के अंदर ना किसी और तरीके से, ठीक है। लेकिन ये खसूसियत जो है वो नबियों की और यानी ऊंचे दर्जे के औलिया की है, सेविंग से जो है वो मना नहीं किया गया। और आजकल के हालात हर लिहाज से जो देखा देखे जाए तो उसके अंदर जो है ना वो सेविंग को बुजुर्ग जो है वो यानी उसकी हौसला अफजाई करते हैं। और ये सेविंग जो है वो इसी नियत से हो कि कल को किसी के हाथ, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, ठीक है, किसी के जो है वो मोहताज ना बनना पड़े। तो असबाब के दर्जे में जितना कर सकते हैं उतना करें, बाकी है कि ज्यादा सेविंग हो जाए तो फिर उसके बाद फिर सदका खैरात, जकात तो निकालनी ही है, फर्ज है, लेकिन सदका खैरात भी जो है वो इंसान करता रहे। तिब्रानी रहमहुल्लाह ताला ने हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला से रिवायत किया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे तो लोगों को आपके आगे से न हटाया जाता था और न मारा जाता था, जैसे कि मुतकब्बिरीन की आदत होती है कि खादिम सामने से लोगों को हटाता है, झिड़कता है, ताकि उनके लिए रास्ता खाली हो जाए। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम के सामने से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता था। और ये चीज जो है वो यानी अब हम अगर इसको सोचते हैं, देखते हैं, तो हमें कोई खास चीज नाउजुबिल्लाह मतलब कोई बहुत खास चीज नहीं लगती। ठीक है, क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ पढ़ा लिखा ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ये बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई है, बहुत ज्यादा इवॉल्व हुई है, बहुत ज्यादा इसके अंदर तब्दीलियां आई। ठीक है, तो अब जो है ना आप देख लें कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज कहलाती हैं, ठीक है, तो उनमें जो है ना ये हटो बचो वाला मामला नहीं होता, बल्कि जो है ना वो पिछले दिनों किसी ने भेजा भी कि बर्तानिया का जो वजीर आजम था ना, माजी में क्या नाम था उसका, बोरिस क्या नाम था, तो वो जो है ना वो अपना सामान खुद उठाया हुआ है और ट्रेन से उतर रहा है, और ट्रेन से उतर करके वो जा रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई कुछ कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये इस किस्म का यानी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से फिर हम जो मुतासिर हुए हैं ना, तो हमने उनसे मुतासिर होकर के जो है वो अपने मुआशरे के अंदर भी इस चीज को जो है ना वो राइज कर लिया है। ठीक है ना, अगरचे के सदर और वजीर आजम उनका एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अपनी जगह पर होता है, लेकिन आम लोग ऐसा नहीं करते। ठीक है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में जो है ना ये काफरों का ये ऐसा अंदाज नहीं था जैसे कि आज काफरों का अंदाज। उस जमाने में जो है ना वो जो काफिर बादशाह होते थे और जो उनके सरदार होते थे ना, उनके लिए तो बहुत ज्यादा एहतमाम किया जाता था, बहुत ज्यादा एहतमाम किया जाता था। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम उस दौर में दुनिया के अंदर आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो यानी लोगों के खाली जिस्मों पर हुक्मरानी नहीं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सियासी हुक्मरान भी तो थे ना, बल्कि दिलों पर हुक्मरानी करने के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं होता था जैसे कि उस जमाने के बादशाहों और उमरा का हुआ करता था। ठीक है, तो उस जमाने के हिसाब से जो है ना ये बहुत मेजर किस्म की यानी एक बिल्कुल ही नई चीज थी दुनिया के लिए। आज तो ये नई नहीं लगती, ज्यादातर नई नहीं लगती, लेकिन उस जमाने में तो बहुत ही नई किस्म की चीज थी। अच्छा, इब्ने साद रहमतुल्लाह ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से कम में कुरान शरीफ खत्म नहीं फरमाते थे। ठीक है, वरत्तिलिल कुरआना तरतीला, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, सूरह मुजम्मिल की आयत है ना अरमनिया, तो नबी अलैहिस्सलाम और अल्लाह का हुक्म ना माने, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कोई काम ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम जो है वो तरतील के साथ कुरान मजीद पढ़ा करते थे, और दिन में फिर और भी जो जो जिम्मेदारियां होती हैं वो जिम्मेदारियां भी अदा किया करते थे, घर वालों को भी टाइम दिया करते थे। ठीक है ना, और वफूद से भी मुलाकात किया करते थे, सब कुछ के साथ जो है वो कभी अगर बहुत ज्यादा कुरान मजीद की तिलावत कर भी रही ना, तो वो भी इतनी नहीं होती थी कि पूरा कुरान जो है वो एक दिन में खत्म कर लिया, और तरतील के साथ पढ़े होते थे। इब्ने साद रहमतुल्लाह अलैह ने मोहम्मद बिन अल हनफिया से रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी कि आप किसी जायज काम के करने से मना नहीं फरमाते थे, बस जब आपसे कोई सवाल किया जाता और आप उस सवाल के पूरा करने का इरादा करते तो फरमाते हाँ, और अगर उसके पूरा करने का इरादा किसी मजबूरी से ना होता था तो खामोश रहते थे। ठीक है, यानी जो चीज शरीयत के अंदर जायज है तो उस मामले में जो है ना वो नरमी, ठीक है, और बस खामोशी इख्तियार कर लेना। खामोशी बहुत सारे सवालों का जवाब होती है। ठीक है, बल्कि कहा जाता है कि खामोशी तो बेहतरीन जवाब होती है। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम को अगर कोई ऐसा जवाब देना होता था जो कि सुनने वाले को बजाहिर पसंद ना आए, ठीक है, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये काम तो हो जाना चाहिए, तो उसकी नागवारी का को भांप करके नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो बस खामोशी अख्तियार कर ली। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने ये अखलाक व आदात नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसील बहश्तदेव में से पढ़ के मुकम्मल कर लिए हैं। फिर अगले हफ्ते जब ये क्लास होगी तो उसमें कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे, अभी 100% इसका फैसला तो नहीं किया है, लेकिन जो दिल में बार बार एक बात आ रही है वो यही है कि इसी के बाद फौरन जो अगली है किताब, सुलूक वल एहसान, ठीक है, अखलाक जमीमा और उनका इलाज, ठीक है, अखलाक हमीदा तो हमने पढ़ लिए जो कि नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक से ज्यादा तो कोई अखलाक हमीदा नहीं हो सकते हैं। अब जो है ना वो अखलाक जमीमा क्या होते हैं, यानी जो मजम्मत याफ्ता अखलाक होते हैं तो वो क्या होते हैं और उनका क्या इलाज हमें कैसे करना चाहिए। तो थानवी रहमतुल्लाह तो हकीमुल उम्मत थे, तो उन्होंने जो बातें लिखी हैं तो उनसे इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें बहुत फायदा होगा। तो इस वजह से दिल में आ रहा था कि इस टॉपिक को ही इसके बाद शुरू कर लिया जाए, लेकिन अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो कुछ इल्म हमने हासिल किया नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, जो कुछ हमने पढ़ा इतने अरसे में, तो अल्लाह ताला उसको हमारे दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बढ़ाने का सबब बनाए और नबी अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा इल्म जो है वो इल्म नाफे में तब्दील फरमाए। आखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगली क्लास से पहले हम थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, तो आप अगर उसको पॉज कर दें।